हाँ शुरू करते हैं, फिर तफसील देखते हैं। वजारू लिल्लाह शुरका अल जिन, और इनका हाल ये है कि ऐसे रब के साथ शरीक ठहराते हैं। और किसको? जिन्नों को। वो समझते हैं जिन ज्यादा अल्लाह के साथ कोई इस काम में शरीक है। वो खलकहुम, हालांकि उसने उनको पैदा किया है इन जिन्नों को। वह खरकू, और उन्होंने तराश लिए लहू बनीना और बनाते हैं बेगैर अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। तुमने देखा कि अल्लाह ने बेटियां बनाई अपने लिए? अल्लाह ताला ने कहीं इसकी कोई दलील उतारी? कहीं कोई पैगंबर ये पैगाम लेकर आया हो कि अल्लाह के कोई नाउज़ बिल्ला बेटे बेटियां? और इन्होंने बना लिया ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा और फरिश्तों को बेटियां और जिन्नों को भी कोई अल्लाह का शरीक बना के बिठा दिया। हालांकि हर चीज को जो अल्लाह पैदा करने वाला है उसके बेटे बेटियां कैसे हो सकते? सुबहानहू, पाक है। इसीलिए हम कहते हैं ना अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, सुबहाना हुआ ताला। यहाँ पे देखें दोनों लफ्ज आ गए, यानी सुबहान पाक मतलब किस चीज से पाक? हर ऐब से। ये भी अल्लाह के लिए ऐब बयान करना है कि उसकी बेटियां बेटे हैं या उसके कोई शरीक है, कि इसका मतलब है शरीक पार्टनर तो उसको चाहिए होता है ना, जो खुद सारा काम नहीं कर सकता। क्यों पार्टनरशिप होती है बिजनेसेस में, कंपनीज में? अकेला एक बंदे की बस की बात नहीं होती, या उसके पास इतना सरमाया नहीं होता तो वो कहता है मेरे साथ कोई पार्टनर मिले। बच्चों की भी क्यों एहतियाज होती है इंसान को? मैं मरने वाला हूं, मेरे ये सारा काम कारोबार जायदादें कौन संभालेगा? मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मुझे कौन देखेगा? मेरा नाम लेवा कौन होगा बाद में? ये चीज होती है जो सबसे ज्यादा इंसान को, मैं अकेला रह जाऊंगा। अकेलेपन को दूर करने के लिए भी इंसान औलाद पैदा करता है। चलो कोई बहुत अमीर नहीं भी है तो गरीब लोग क्यों औलाद पैदा करते हैं? कहते हैं हमारा सहारा बनेंगे, हमें कोई पूछने वाला होगा, हमारे बच्चे होने चाहिए। तो जिस रब को ना मौत है, ना जवाल है, ना कोई बुढ़ापे और ऐसी कोई कमजोरी लाहक है, उसको औलाद की क्या जरूरत? उस पे तगैयुर नहीं है, उस पे चेंजेस नहीं है कि उसके ऊपर कोई चेंज आके उसको कोई वक्त के साथ साथ, जैसे इंसान है वक्त के साथ साथ वो जवाल की तरफ जाता है, उसकी एक पीक जब आ जाती है उसके बाद नीचे ही है हम सारे। एक पीक आ चुकी, 30 ईयर्स के अंदर पीक पे होता है इंसान, उसके बाद बस डाउन का ही सफर होता है, अप का नहीं होता। अब देखने नहीं है हम जो पिछले साल या उससे पिछले साल जो हमारी हिम्मतें होती हैं वो अगले साल में नहीं होती, उतना हम नहीं काम कर पाते, उतनी समझ भी नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता जहन भी कम से कम होने लगता है, जिस्मानी तौर पे भी इंसान कम से कम होने लगता है। अल्लाह की जात ऐसी है कि जिसके ऊपर कोई चेंज नहीं है, ऐसी कोई तगैयुर नहीं है, कोई डाउनफॉल नहीं है। तो जब उसके लिए कोई औलाद कहता है तो ये इतनी बुरी बात इसलिए है कि वो सोचता है कि अल्लाह ताला को कोई मोहताजी है औलाद की? वो मोहताज है? उसके ऊपर कोई नाउज़ुबिल्ला कोई जवाल है? तो जो अल्लाह के लिए औलाद ठहराता है वो बहुत सारी बातों के अंदर अल्लाह ताला के लिए ऐब लगाता है, एक बात नहीं है सिर्फ, बहुत सारी बातों में। औलाद की उसको जरूरत है जिसको पर मौत है, अल्लाह ताला को तुम कहते हो औलाद है तो क्या तुम उसके लिए ऐसी चीज सोचते हो? ये वो जो उसके बाद उसके काम संवारे, अल्लाह ताला के लिए तो ऐसा कुछ नहीं। तो शिर्क कितनी बुरी चीज है, इसलिए कि अल्लाह ताला के इख्तियारात में मिल्कियत सारी उसकी, तुम उसके साथ दूसरे मालिक बना के बिठा देते हो। तुम कौन होते बिठाने वाले? तुम तो, तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं कि तुम अल्लाह के साथ शरीक बना लो। इसलिए अरब कहते थे ना अल्लाह तेरा कोई शरीक तो नहीं है लेकिन जिसको तू खुद ही अपना शरीक बना ले। ये क्या बात है, अल्लाह ने तो अपने साथ किसी को शरीक नहीं बनाया क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं शरीक की। जब तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो तो इसका मतलब है कि अल्लाह को जरूरत है। ये सारे फरिश्ते और सारे इंसान और हर चीज भी खत्म करके पना करके, जब मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट क्लास में बताया था कि अल्लाह ताला उस दिन पूछेगा ना लीमन अल मुल्क अल यौम, किसके लिए बादशाहत आज? कोई जवाब नहीं दे रहा होगा। अल्लाह तो वही है, कोई फरिश्ता तक भी जिंदा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला को किसी की एहतियाज नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। और जब शरीक कहते हो तो इसका मतलब तुम ये मानते हो कि अल्लाह को जरूरत है। तो हम तो अल्लाह को पाक ठहराते हैं, सुबहानहू, पाक है वो, वह ताला और बुलंद है। अम्मा यसिफून, इससे जो ये बयान करते हैं इस तरह की बातें, अल्लाह इनसे बहुत बुलंद है, करीब करीब भी ये चीजें नहीं फटकती अल्लाह के। बजी उस्समावात, नए सिरे से पैदा करने वाला आसमानों और जमीन को, यानी पहले से इनका कोई नमूना नहीं था, कोई इनका पहले से ऐसा कोई जैसे होता है ना कि हम एक चीज, इवन ये जो कपड़े बनाते हैं वो कपड़े भी उनके रंग जो हैं वो नेचर से देख के लेते हैं, कहते हैं कि कलर जो है वो नेचर से उनको पता चलता है कि क्या अल्लाह ताला ने ये रंग बनाए हैं। तो वो या कोई भी और चीज कोई बनानी होती है तो कोई मॉडल देखता है, कोई आइडिया उसको आता है, कोई चीज देख के कहता है हाँ वो मैंने चीज देखी, फिर मुझे ये आइडिया आया, फिर मैंने ये बनाई। अल्लाह ताला ने कहीं से आइडिया नहीं लिया कि मैं यहां से देख के ऐसी चीज बना लू, नहीं, वो बदिया है, यानी इनिशिएट करना, बिल्कुल नई एक चीज ईजाद करना। उसने ऐसे आसमान और जमीन बनाए हैं तो उसमें उनका, उसका कोई शरीक नहीं अल्लाह ताला का, वो खुद ही बनाने वाला है इनको। आसमानों से मतलब क्या है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं सिर्फ ये नहीं, जितनी कायनात है, जितनी गैलेक्सीज हैं, जितनी सितारे सैयारे चांद, जितने ये सब कायनात में जो कुछ फैला हुआ है वो सब जो जमीन के ऊपर है, जमीन तो बहुत ही छोटी सी चीज है उसके सामने। तो ये सिर्फ आसमान की तरफ देख के ना सोचे, अच्छा इस आसमान को, असमावात, जितने भी कायनात है, अन्ना यकूनु लहू वलद, कैसे हो सकता है उसका कोई बेटा, वलम तकुन लहू साहिबा, उसकी तो कोई बीवी भी नहीं। वो तो कहते ना ट्रिनिटी को के फादर सन और फिर हजरत मरियम को साथ बना लेते, और इस तरह की बातें बाज ने जिन्नात के साथ रिश्तेदारियां बना दी नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला की। तो तुम तो देखते हो कि तुम्हारा निजाम ऐसे है कि कोई आदमी होता है उसकी बीवी होती है और फिर उससे कोई औलाद पैदा होती, अल्लाह ताला की जैसा तो कोई है ही नहीं, उसकी ना कोई बीवी है ना उसका कोई बेटा है। वह खलक कुल्ला शय, उसने सब सब चीज को क्रिएट खुद किया है, वो सब उसकी क्रिएशन है, तो मखलूक खालिक के बराबर कैसे हो सकती है। जो बीवी भी होती है वो उसकी साथी होती है, उसकी जिन्स से होती है, ऐसे नहीं होता कि इंसान का प्यार कोई बंदर के साथ हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जब उसके जैसा कोई है ही नहीं, सभी उसकी मखलूक है, तो फिर उसके जोड़ा कैसे हो सकता है, जब उसका जोड़ा ही कोई नहीं तो उसकी औलाद कहां से होगी। वह हुआ बिकुल्ली शयइन अलीम, और वो हर चीज का जानने वाला है। मखलूक को बना के भी उसने छोड़ा नहीं है, उनका हर चीज को पता रखने वाला, इल्म रखने वाला। जब हम सोचते हैं ना वह हुआ बिकुल्ली शयइन अलीम, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जमीन के ऊपर जितने जानदार हैं, बेजान हैं, हर चीज का इल्म अल्लाह को है, समुंदर की मछलियों का है, कीड़ों का है, परिंदों का। लेकिन आपने कभी सोचा कि अल्लाह ताला कायनात का रब है, चलाने वाला है, बनाने वाला है, सस्टेनर है, मेंटेनर है। हम इतनी छोटी सी अपनी जमीन का सिर्फ सोचते हैं, कभी सोचते हैं आपके कायनात में अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसके लश्करों को वो ही जानता है। कुरान में है ना अल्लाह के लश्करों को वो ही जानता है, कौन से सितारों सैयारों पे और कौन सी मखलूक हो, कौन से सितारे सैयारे हैं, उनकी क्या नीड्स हो, कौन सी और अल्लाह ने कोई चीजें पैदा की हो, उनकी भी निगहदाश्त करना, उनके बारे में भी इल्म होना, फरिश्तों का इल्म होना जिनकी गिनती भी नहीं गिनी जा सकती थी, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मुझे नहीं पता कि इनका आज तक ना मैंने इनका स्टार्ट देखा ना मैंने इनका कभी एंड देखा, इतने फरिश्ते अल्लाह के घर का ऊपर बैतुल मामूर का तवाफ करने में लगे हुए हैं और लगे हुए हैं, और जिनकी एक दफा बारी आ गई दोबारा नहीं आती, वो फरिश्ते कितने होंगे, उनकी क्या बातें हैं, उनकी क्या तस्बीहात हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, सब चीजों का इल्म उस एक जात को होना, ये कितनी बड़ी बात है, इंसान की तो अकल ही दंग रह जाती है। सितारे सैयारे वो कहते हैं हम गिन नहीं सकते, साइंसदान कहते हैं वो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस कह के बस कर दिया उन्होंने, वो कहते हैं हम नहीं गिन सकते इनको, ये कितने हैं, कहते सारी जिंदगी भी आप गिनते रहें, हर सांस के साथ एक सितारा गिनते भी रहें, तब भी आप खत्म हो जाएंगे, सितारे खत्म नहीं होंगे, इतने हैं इस कायनात में फैले। तो जो इनकी गिनती नहीं कर सकता वो इंसान आगे क्या जानेगा, अल्लाह ताला उनका भी इल्म रखता है, और वहां पे क्या है उसका भी उसको इल्म। हम तो भी यहाँ तक मार्स तक पहुंचे हैं तो हम बहुत बड़ी अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि जी हम ने वहां की तस्वीरें ले ली हैं और हम देखो कितना बड़ा कारनामा कर दिया हमने। इंसान ना बड़ा बनता बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ी चीज, मेरा नॉलेज बहुत, मेरी साइंस बहुत आगे, मेरा ये बहुत, अगर वो सोचे ना तो वो कुछ भी नहीं है। जिस दिन इंसान समझ लेगा ना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उस दिन ही वो समझ सकता है कि अल्लाह की जात कितनी बुलंद है। जब वो खुद ही खुदा बना बैठा है तो उसने क्या किसी को खुदा समझना। ये अपनी फूंक हाँ खत्म करें कि मैं को खुदा हूं, मैं को बहुत बड़ी चीज हूं, कुछ नहीं है इंसान। और कभी इंसान अपने आप को तो नहीं समझ रहा होता, लेकिन अपनी साइंस और अपने अलूम को समझ रहा होता है। इंसान ने जी देखो कितनी तरक्की कर दी, इंसान देखो जी कहां तक पहुंच गया। तो तुम कहां तक भी पहुंच जाओ तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो अभी पता ही नहीं है कि कायनात है कितनी वसी। तो वो बंदा ही बन के रहे तो यही उसको सूट करता है, खुदा ना बने। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह तआला ने फरमाया ये है तुम्हारा रब, अल्लाह अल्लाह है तुम्हारा रब। कोई किसी को कह दे कि मैं रब हूं, फिरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, उससे को रब नहीं बन जाता। रब वो होता है जो बोलने से नहीं बनता, मैं रब, किसी ने कह दिया, निमरूद ने कह दिया मैं रब, आज के लोग कह रहे हैं हम ही रब बन गए हैं, हमने इतनी तरक्कियां कर ली। फिरौन नमरूद क्या चीज थे जी, वो तो पुराने लोग थे, उनको क्या पता था हम बहुत बड़ी चीज है, हम है रब, हम सब चला रहे हैं। मुंह से ना भी बोले बातें और अपने दावे तो यही है, लेकिन तुम देखो मुंह से बोलने से कोई रब नहीं बन जाता। रब वो होता है जिसने ये सारा निजाम चलाया हुआ, जो वो काम करके दिखाए जो रब वाले हैं, और इंसान में से कोई ऐसे काम नहीं कर सकता। तुम कहां से मालिक और रब और चलाने वाले और मेंटेन करने वाले और निगहदाश्त करने वाले और परवरिश करने वाले तुम कहां से होगा, तुम कहां से मालिक बन बैठे। मालिक तो वो है जिसने खला का कुल्ला शही, हर चीज को उसने, कुल्ला शही में क्या आ गया, वो चीज बाकी रह गई। जब कह दिया खला का कुल्ला शही, उसने पैदा किया हर चीज को, तो हर चीज सोच लें फिर उसमें क्या क्या है। तो जो पैदा करने वाला वही मालिक होगा ना। मेरा और आपका जो इख्तियार चीजों पे, वो थोड़ा लिमिटेड, अल्लाह ने दिया हुआ कि ये लो मैं तुम्हें अमानत देता हूं, हम खाम खा मालिक बने बैठे हैं, मेरी जिंदगी मेरी जात। खाला का कुल्ली जैन में मैं और आप भी तो आते हैं, इसका मतलब मुझे और आपको भी तो उसने पैदा किया, तो फिर क्यों कहते हैं मैं मेरी जिंदगी मेरी जो मर्जी होगी। आप तो अपने आप के भी मालिक नहीं है, अपने आप को खुद पैदा कर लेते हैं, आपके हाथ खुद पैदा किए हैं, आंखें खुद पैदा किए हैं, कान खुद पैदा किए हैं, नाक खुद पैदा किए, कुछ भी नहीं, एक एक सांस की भी आप मोहताज हैं। क्या मर्जियां करते हो भाई, छोड़ो इन मर्जियों को। ला इलाहा इल्ला हू, तो कोई इलाह नहीं है उसके सिवा। जब रब वो है जो मालिक जो खालिक जो चलाने वाला, तो इलाह में और रब में क्या फर्क है। रब में ये सारी चीजें आ जाती हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, मालिक फालिक चलाने वाला, परवरिश करने वाला, निगहदाश्त करने वाला, हिफाजत करने वाला, रिस्क देने वाला, जरूरतें पूरी करने वाला, वो सब क्या है रब। ठीक है, इलाह क्या होता है, इलाह मतलब वो जो इबादत के लायक है। तो कोई इबादत के लायक भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यहां नहीं था कि वो अल्लाह को रब ना मानते। वो सब मुशरिकीन अल्लाह को रब मानते थे, कहते थे हाँ अल्लाह ही है जो ये, जिसने जब पूछा जाए कुरान पाक में भी है कि जब उनसे पूछा जाता था जमीन और आसमान किसने पैदा किए, तो कहते हैं अल्लाह ने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता था, इबादत जब करने लगते थे दूसरों मुशरिक करने लग जाते। तो फिर ला इलाहा, फिर ये भी मान लो कि कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, इल्ला हुआ मगर वो। आज भी कहते बेटे तो अल्लाह नहीं देने, औलाद तो अल्लाह ने देनी, काम तो अल्लाह ने देने, लेकिन जाके सजदे हमने कब्र पे करने। फिर कहते हैं आपने ही हमें देना है, उन कब्र वालों को कहते हैं, उनकी तरफ हाथ उठा उठा के दुआएं करते हैं, उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाते हैं, उनके ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, यहीं से तो मिलना। फिर जब उनसे पूछा जाए कहते नहीं देता तो अल्लाह ही है। वो खुदा के बंदो तुम कहते हो, आप उनको जाके कहते हो अल्लाह माफ करे दाता साहब आपने देना है, अजमेर शरीफ में जाकर कहते हो आपने देना है, आप इन्हीं के सदके हम खाते हैं, हमें तो वरना मिलना ही नहीं था। कहते हैं जब आप मानते हो कि एक अल्लाह है ये सारा कुछ करने वाला, फिर क्यों उसकी इबादत के अंदर शरीक करते हो कि ये देंगे हमें। खुद उनको कब्र में उतारते हो खुद अपने हाथों से, फिर कहते हो अब ये हमारे काम संवारेंगे। पता नहीं अकलें किधर चली जाती हैं। खालिकु कुल्ली शैइन फअबुदूह, वो जो पैदा करने वाला है हर चीज का, पास उसकी इबादत करो ना। وهو على كل شيء وكيل، هر چیز کا کار ساز وہی ایک. وکیل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار، مینج کرنے والا، وہ ہے مینج کرنے والا سب چیزوں کا. تو کہ جب بیمار ہوتے ہیں پھر کہتے نہیں وہ شفا وہاں سے ملے گی، جب کسی مسئلے میں پڑتے ہیں تو کہتے نہیں مشکل کشا فلاں. سارا توحید، یہ ایک سورت ہی کوئی پڑھ لے نا تو توحید ہے اس کے اندر، مگر عقلوں کو کھول کے پڑھے نا کہ کسی کو بھی نہیں ہم نے شریک کرنا، اندر ملنا ہے تو اللہ کے در سے ملنا ہے، وہاں سے نہیں ملانا تو کوئی اور دے نہیں سکتا مجھے. یہ عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم مشکل کے اندر ہوتے تو پھر کہتے ہیں ہائے چلو چلو چلو، فلاں نے وہ بتا دیا اس کی طرف چلو، اس نے وہ بتا دیا وہاں پہ چلو، کوئی جگہ ہم چھوڑتے ہی نہیں، پھر سب توحید بھول جاتی ہے. نہیں، رونا ہے تو اللہ کے آگے، ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے، اپنی کمزوری کا، اپنی محتاجی کا اظہار کریں تو اللہ کے آگے. اللہ نے تو بچا لیا ہمیں در در کے اوپر سجدے کرنے سے، کہ ایک رب کو سجدہ کرو جو اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، تم جا کے پتھروں کے آگے سجدے کرنے شروع جاتے. تم اپنی امیدیں ان سے باندھتے ہو، امید اللہ سے لگانی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ سے دلوا دیں گے ہمیں. ان کی کیا اتنی پوزیشن ہے کہ وہ اللہ سے دلوا سکے؟ اللہ نہ چاہے اور وہ اللہ سے کہہ کے اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مجبور کر دیں کہ نہیں اس بندے کو دے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اس کو نگاہیں پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. ادراک جو ہوتا ہے نا، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا، وہ ہوتا ہے ادراک. یہ آیت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ایک فرقہ گزرا ہے، معتزلہ ان کا نام ہے، انہوں نے اس آیت کو لے کر اور یہ مسئلہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لہذا جنتی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اللہ کو کوئی دیدار کر ہی نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اور انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پہ ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کر ہی نہیں پا سکتی، تو پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا سارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھنے کی بات اس طرح سے نہیں آ رہی، یہاں پہ ادراک کی بات آ رہی ہے. اور ادراک کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کی حقیقت کو پا لینا. جنتی اللہ کو دیکھیں گے مگر وہ بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. مثال کے طور پہ ہم انسان کوئی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا اس کتاب کو دیکھا تو چلو اس کو پڑھ لیا، اس کی جان لیا اس کے اندر کیا ہے، کوئی چیز کو دیکھا اس کا علم تھا، ہم نے اس کی حقیقت جان لی. لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے باوجود وہ جان نہیں پائیں گے اس کو. آپ دیکھیں انسانوں کی تو حالت یہ ہے کہ وہ یعنی بعض دفعہ دنیا میں بھی چیزوں کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، تو اللہ کی ذات کو کہاں سے پائے گا؟ دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں کی ہم حقیقت نہیں سمجھ پاتے، انسان کا علم وہاں پہ نہیں ختم ہو جاتا، کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات؟ اس کو تو کوئی نگاہیں پا ہی نہیں سکتی. ہاں وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس کو پتا ہے ہر چیز کی حقیقت، اندر باہر سب کچھ پتا ہے. تو وہ دیکھیں گے تو صحیح مگر ادراک نہیں کر سکیں گے. ایک جواب اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس کا جواب پتا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے بھی کوئی آ سکتا ہے جو کہہ سکتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے جی کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں جنتی، کیونکہ قرآن میں تو یہ ہے ادراک کا لفظ ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ ادراک کا مطلب ہوتا ہے حقیقت تک پہنچ جانا، احاطہ کر لینا، کسی چیز کے کو پا لینا، پکڑ لینا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو وہ تو واقعی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بالفرض یہ معاملہ لے بھی لیں کہ یہاں پہ جی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب ہے، اگر ہم مثلا یہ لے بھی لیتے تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو نفی پھر ہوگی وہ دنیا میں دیکھنے کی بات ہے، کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا رب اللہ تعالیٰ سے ربی ارینی، ہے اللہ میں تجھے دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ترونی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ جو کلیم اللہ تھے उनको ये जवाब मिला तो और कौन अल्लाह को देख सकता है फिर दुनिया में। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पे अल्लाह तआला को देखा उसने झूठ बोला, ये हदीस में है। लेकिन कयामत के दिन वहां जन्नत में जाके जरूर अल्लाह को देखा जा सकेगा, और इसकी दलील कुरान में है, वजूह यौम इदिन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा, उस दिन कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, हशाश बशाश होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, तो और ये भी पता चलता है हमें कि जो जहन्नमी होंगे उनकी इतनी बड़ी उनको गम होगा कि वो अल्लाह को देख नहीं सकते, क्योंकि उनके बारे में सूरह मुतफ़िफ़ीन में आता है ना, कल्ला इन्नहुम अर रब्बिहिम यौमा इज़िल्ला महजूबून, कुफार उस दिन अपने रब की दीदार नहीं करेंगे, उससे वो हिजाब में होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से भी पता चलता है कि लोग अल्लाह ताला को ऐसे देखेंगे नहीं, इतने सारे लोग, इंसान सोचते हैं ना कैसे देखेंगे, इतने सारे लोगों की कैसे बारी आएगी अल्लाह को देखने, तो फरमाया कि जैसे तुम चौदहवीं रात के चांद की तरफ देखते हो, और कोई किसी को मुश्किल नहीं होती, सब देख रहे होते हैं, किसी को मुश्किल नहीं होती कि नहीं तुम पीछे हटो फिर मैं आगे होके देखूंगा, ऐसे तो नहीं कोई कर रहा होता, उस तरह से लोग अल्लाह ताला को उस दिन देख रहे होंगे सामने। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ला तुदरी कुबल अबसार, निगाहें उसको नहीं पा सकती, वाह, निगाहें दुनिया की तो निगाहें इतनी कमजोर हैं कि वो सूरज ग्रहण होता है तो वो कहते हैं जी कोई उसको ग्लासेस के बगैर ना देखे, क्यों छुट्टी कर देते हैं घरों में, क्यों लोगों को बंद कर देते हैं, नहीं जी सूरज की तरफ आपने नहीं बिल्कुल देखना क्योंकि कोई अंधा हो सकता है, तो सूरज अल्लाह की छोटी सी मखलूक है, इसकी तरफ नहीं इंसान की नजरें देख सकती, ये दुनिया की निगाहें तो अल्लाह तला की कैसे बर्दाश्त कर सकती। लिहाजा अल्लाह ताला वहां पर और कुव्वतें देगा जिनसे इंसान अल्लाह ताला का दीदार कर सकेगा, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जो अल्लाह ताला का दीदार दिन और रात करें, यह सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी और सबसे बड़ी नेमत होगी जन्नतियों के लिए। वह लतीफुल खबीर, और वो बारीक बीन है, बाखबर है, इसीलिए तो वो पा लेता है निगाहों को, क्योंकि वो अल्लतीफ है, बारीक बीन है, निगाहें कहाँ उठती हैं कहाँ झुकती हैं, इंसान पास बैठा दूसरे को नहीं जान सकता कि इसकी नजर किधर गई, किस नियत से इसने नजर उठाई, किस नियत से इसने नीचे की, अल्लाह ताला को वो पता है। ये होता है इदराक, यानी एक होता है ना सिर्फ देखना, अच्छा मैंने उसको देख लिया, वो तो वहां देख रही थी, वो वहां देख रही थी इतना चलो मैंने देख लिया, लेकिन इससे आगे मुझे नहीं पता कि उसने जब देखा तो उसकी नजर में हया थी कि बेहयाई थी, उसने देखा तो उसने क्या सोचा, फिर उसने किस नियत से ये नजर उठाई, ये मुझे, ये होता है इदराक कि ये उसकी इन एंड आउट, उसका इनसाइड आउट आपको पता चलता है, वो नहीं हो सकता। तो वो अल्लाह जानता है हर नजर का, तो सोच लें जब हमारी नजरें उठती हैं ना कहीं, तो सोच लिया करें कि ये नजरों को अल्लाह ही जानता है, कोई जाने ना जाने, शौहर नहीं जानता, बच्चे नहीं जानते, कोई और नहीं जानता, मगर मेरा अल्लाह जानता है कि मेरी नजर कहाँ उठी है, क्यों उठी है, किस नियत से उठी है, क्या लेके लौटी है। ठीक है, तो नजरों पे भी पहरे लगे हुए हैं, हम सोचते हैं नजरों की बातें कौन सा फरिश्तों को भी पता चलनी है, वो तो मुंह के बोल लिख रहे हैं, उनको क्या पता मैं क्या देख रही हूँ, उनको क्या पता मैं क्या सोच रही हूँ। आप सरसर ने हया करने को कहा है ना दो चीजों में, तो उनमें एक हया क्या है कि जो दिमाग में ख्याल आते हैं उन पे भी अल्लाह से हया करो। ठीक है, अल्लाहु अकबर, कद जाअकुम बसाइरु मिन रब्बिकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास खुली दलाइल तुम्हारे रब की तरफ से, ये खुले दलाइल है ना, कुरान खुली दलील है, क्या इससे ज्यादा खुली खुली बातें हो सकती। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात उनमें मौजूद थी, जो देखते थे उनको देख रहे थे ना, कि पहले ये पहले भी बातें करते थे, ये वाली बातें तो नहीं होती थी, अब ये जो बातें हैं ये डिफरेंट ही हैं, जो वही की बात कह रहे हैं, तो तुम्हारे पास खुली दलीलें आ गई तुम्हारे रब की तरफ से, आज हमारे पास नहीं है। फमन अबसरा फली नफसी, तो जो कोई देख लेगा ना तो उसके अपने लिए अच्छा है, वमन अमिया फअलैहा, जो अंधा बना रहा तो उसके अपने ऊपर है इसका बवाल, उसके अपने खिलाफ है। लेकिन जब हम कोई नेकी करते हैं ना तो असल में हम अपने साथ भलाई कर रहे होते हैं, किसी और के साथ तो वो बाद में है, आप किसी के काम आ गए, किसी के गम में उसको आपने परेशानी को दूर कर दिया, किसी की और तकलीफ को दूर किया, किसी के काम आए, वो आप सोचते मैं इसके काम आ गई, मेरा इसके ऊपर एहसान है, हालांकि वो सबसे पहले हम अपने आप पे एहसान कर रहे थे। नेकी करके आपका एहसान अपनी जात पे है, क्या आपने अपने लिए जन्नत के लिए एक और अमल तैयार कर लिया कि आपके तराजू में नेकियों के पलड़े में वो पड़ा होगा। बहुत वजनी भी हो सकता है आपकी नीयत के मुताबिक, हल्का भी हो सकता है, लेकिन आपने तैयार कर दिया अपने अपने लिए नेकियों के पलड़े में एक और वजन। तो अपने साथ भलाई की कि उसके साथ? आपकी तो अपने साथ बहुत बड़ी भलाई है, उसके साथ तो चलो छोटी सी आपने उसकी प्यास बुझा दी, उसको खाना खिला दिया, उसके साथ वो तो बहुत छोटी सी चीज है, खत्म हो जाने वाली है, लेकिन जो आपने अपने साथ भलाई की ना, वो आखिरत तक रहने वाली है, वो वहां के तराजू में तुलेगी जहां पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और जो बुराई करे, जो इस हिदायत से मुंह मोड़े, वो कहे मैंने नहीं सुनना, मैं नहीं मानती, मैं नहीं आती, मैं नहीं सीखूंगी, तो किसी का कोई नुकसान नहीं, अपना ही नुकसान किया। अपने आप को खुद ही जन्नत से दूर करके इंसान अपना नुकसान करता है ना, किसी और का क्या नुकसान है? ये ऐसे ही है कि माँ बच्चे को समझाती है ना, अब बच्चे को जैसे सारी माएं सोचें, बच्चों को हम समझाते हैं जब, तो हम क्या कहते हैं उनको, उनकी कोई कमाई का या उनके पढ़ने का या उनकी कोई, माँ बाप को क्या फायदा? माँ बाप को उनके पैसों की तरफ तो नहीं नाक लगा के बैठे होते कि भाई ये कब कमाएगा तो हमारी तिजोरियां बढ़े, ऐसा तो नहीं होता। इसी तरह अगर बच्चे नेक निकलते, चलो ठीक है अपने लिए सदका जारिया का एक लालच होता है, लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि सबसे ज्यादा ये होती है कि बच्चे की खैर ख्वाही, कि बेटा ये तुम्हारे अपने लिए अच्छा है, तुम नेक दोस्त बनाओ, तुम नेक मजलिसों में बैठो, तुम नमाज पढ़ो, तुम ये करो, तुम अल्लाह के फरमा बरदार बनो, तुम्हारे लिए अपने लिए अच्छा है। तो इसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है, हम जैसे जो इतने अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, हम तो बड़े हो गए, ये बच्चे हैं इनको समझ नहीं, ये सुनते नहीं, हम कौन से सुनते हैं जब हम भी इन बातों से मुंह फेर लेते हैं, हम इतनी कोशिश करते हैं हमारा बच्चा समझ जाए, लेकिन जब अल्लाह ताला हमें समझाता है कुरान पाक में वो ही बातें, तो हमें समझ आती है कि तुम करोगे तो अपने लिए कर रहे हो, इसके ऊपर इतना रोना धोना भी नहीं होना चाहिए, हाय बहुत बड़ा थक गए, हाय मैं तो ये कर करके, मैंने तो इतनी नमाज पढ़ी, मैंने तो इतना कुरान पढ़ा, मैं तो ये याद कर करके थक गई, तो अपने लिए भला किया ना, किसी के लिए कुछ नहीं है, अपने लिए आप कर रहे हैं। तो जिसने देख लिया आंखें खोलनी इस दुनिया के अंदर और इन बसायर से फायदा उठा लिया, तो उसके अपने लिए अच्छा। और जो अंधा बना रहा है, तो कयामत के दिन देखें वो सूरह ताहा में आता है ना, इंसान को अंधा उठाया जाएगा, एक इंसान को, तो वो कहेगा या अल्लाह मैं अंधा क्यों, मैं तो दुनिया में देखता था, मेरी आंखें थी, तो कहा जाएगा तो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से अंधा बना रहा, तो आज तुझे अल्लाह अंधा ही उठाता, तुम अंधे बने रहे ना, तुम ब्लाइंड बने रहे, जैसे कि है ही नहीं है ये कुरान, तो अल्लाह ताला उस दिन अंधा उठाएगा जो इस दुनिया में इससे अंधा, यानी फिजिकल आईज से तो देखता था लेकिन उसने ऐसे ही जिंदगी गुजारी जैसे वो देखता ही नहीं है कि कोई अल्लाह के अहकाम है, कोई अल्लाह का कानून है, उसे अंधा बना रहा। अलैकुम बिहफीज, और नहीं मैं तुम्हारे ऊपर निगरान, यानी आप इनसे कह दीजिए कि मेरा काम तुम्हारे ऊपर निगरानी करना नहीं है, मैं कोई दारोगा नहीं हूं, मैं तुम्हारा जवाबदेह नहीं हूं, मेरा काम सिर्फ बता देना।